الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے بچوں، اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے. آج ہم صفائی ستھرائی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی کلینلینس پر ہم کچھ کلام کریں گے. پہلے تو آپ کو ایک سبق آموز جو کہ بنائی گئی ہے ہسٹوری، وہ سناتا ہوں. ایک سمجھدار اور پیارا پیارا بچہ تھا اسید، یوں تو بہت پڑھنے میں بھی ذہین تھا، شارپ تھا، لیکن ایک عادت اس کی اچھی نہیں تھی کہ جب یہ چیزیں کھاتا نا تو اس کے ریپر وہ ادھر پھینک دیتا، ادھر ڈال دیتا، یہ کرتا تھا، ڈسٹ بین میں نہیں ڈالتا تھا. اسی طرح ایک بار اس نے کیلا بنانا کھایا اور اس کا چھلکا اس نے یوں پھینک دیا، اور اپنے گھر کے بالکونی میں یہ کھڑا ہوا تھا اور ادھر ادھر کچھ دیکھ رہا تھا، مناظر سین وغیرہ دیکھ رہا تھا. اچانک اس کو چیخنے کی آواز آئی، زور سے وہ آواز سنی تھی چیخنے کی. تو اس نے ایک دم جب دیکھا تو ان کے پڑوس کے جو چاچا تھے، ان کی ایج تقریباً 65 ہوگی، وہ اس کیلے کے چھلکے پر پھسل کر گر پڑے تھے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس چاچا کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس سے بڑا گھبرایا، اس کو افسوس بھی ہوا کہ میں نے یہ بنانا کا چھلکا اس طرح پھینکا، کیونکہ ہمارے پڑوسی بیچارے بزرگ اولڈ مین، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. خیر لوگ تو ان کو ہسپیٹل لے گئے. اس سے کے ابو جب آئے تو انہوں نے اپنے ابو سے ساری بات بتائی کہ میری غلطی کی وجہ سے اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ اس سے اور ان کے ابو ہاسپٹل پہنچے، اس بزرگ کو تسلی دی، اسید نے معافیا مانگی کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا کہ میں نے بنانا کا چھلکا اس طرح روڈ پہ پھینک دیا اور آپ کو یہ تکلیف ہو گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے معاف کر دیں. تو وہ جو اولڈ مین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے بھی اس پر بچے کو پیار دیا اور کہا کوئی بات نہیں بیٹا، جو میرے نصیب میں ہوا وہ ہو گیا، آئندہ خیال رکھنا، ایسا نہیں کرنا. تو اسید نے بھی وعدہ کیا کہ اب ریپرز یا چھلکے جو بھی ہیں میں ڈسٹ بین میں ڈالوں گا، اب میں روڈ پہ انشاءاللہ اور گلیوں میں نہیں پھینکوں گا. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ معمولی سی بے احتیاطی کہ ریپرز پھینک دینا، چھلکے پھینک دینا، کہ بعض اوقات کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں اس سے بڑا مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، میرے بڑے بھائی کا. میرے بڑے بھائی وہ پنجاب سے سفر کر کے کراچی آ رہے تھے، حیدرآباد میں یہ نیچے اترے اسٹیشن پر شاید پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے پانی پیا تو وہ پانی کا جو مگ تھا وہ گر گیا، تو یہ پلٹ کر اٹھانے گئے، اتنے میں ٹرین نے سیٹی دے دی اور ٹرین آہستہ آہستہ چلنی شروع ہو گئی. بھائی بھاگے تو بتاتے ہیں کہ کسی نے اسی طرح کیلا کھا کے چھلکا پھینکا تھا، تو میرے بڑے بھائی کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا، وہ پھسلے. تو انہوں نے ट्रेन तक पहुंच गए थे तो उन्होंने ट्रेन का हैंडल पकड़ लिया, तो वो हैंडल भी स्लिप हो गया, हाथ स्लिप हो गया इनका, और पटरी के नीचे चले गए और बस वो कट गए, उनकी लाश इधर से कटी, पांव कट गए और वहीं इनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो इस तरह मतलब है कि केले के छिलके या पपीते के छिलके या और फलों के छिलके जो होते हैं फ्रूट के, ये बड़े खतरनाक होते हैं कि जान भी ले सकते हैं। वो तो मैंने आपको वैसे ही एक बनाई हुई स्टोरी थी, मैंने अपने भाई की सच्ची स्टोरी आपको सुनाई जो मैंने सुनी है। मैं उस वक्त साथ नहीं था, ये बताया गया कि इस तरह आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं हैदराबाद गया था अपने भाई की लाश लेने के लिए, और हमारे लिए कि एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए सदमे की बात थी और तकलीफ की बात थी। अल्लाह मेरे भाई को बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए, बेहिसाब इसकी मगफिरत करे, जन्नत में बेहिसाब दाखिला इनको नसीब करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो इन एहतियातों के साथ साथ प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें सफाई सुथराई का भी हमको लेसन मिलता है कि इधर उधर चीजें फेंकने से, रेपर्स फेंकने से, कचरा डालने से जरा कि वो गंदगी फैलती है, और घर में भी ये ख्याल रखना है, गली में भी ख्याल रखना है। जहां पढ़ते हैं तो अपने उस रूम में भी इस तरह कोई चीज नहीं डालनी, जैसे इस वक्त आप यहाँ जमा है तो यहाँ भी माशाल्लाह आपने कोई चीज ऐसी नहीं फेंकी है ना, कि तो कैसी क्लीन जगह है। तो ऐसा घर में भी सब मतलब क्लीन होना चाहिए, हर जगह पर मतलब क्लीन के मतलब सफाई जो है ये इस्लाम को पसंद भी है, और अल्लाह करीम सफाई जो करते हैं उनसे ज़ाहिर खुश भी होता है। कुरान करीम में इरशाद होता है, इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतातहिरीन, यानी बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो सफाई सुथराई अल्लाह पाक को भी पसंद और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज हमारी साफ हो, चीजें भी साफ, बर्तन भी साफ, कपड़े भी साफ, किताब भी साफ, इधर इधर उधर से इसको लकीरें मारना और गंदा करना, चिकने हाथ दीवारों पर लगना, बाज बच्चे पेन से या पेंसिल से दीवारों पर भी लकीरें बनाते हैं, और ये सब यानी कि वो डर्टी चिल्ड्रन ऐसा करते हैं, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, गंदे बच्चे ऐसा करते हैं, हर चीज को वो गंदी करते रहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप कोई सवाल करेंगे मुझसे? कौन सवाल करेगा? अच्छा चलो कोई भी कर लो।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल आजाद तारी है। मेरा अमीर हुसैन से मेरा यह सवाल है कि बहुत से बच्चे अपने कपड़ों को साफ सुथरा नहीं रखते, मिट्टी में खेलते हैं और स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म तब्दील नहीं करते, ऐसा करना कैसा है?
हाँ जाहिर है कि फिर वो सफाई के मसाइल तो खड़े होंगे, मिट्टी में खेलेंगे और चिकने हाथ लगा देंगे तो इस तरह तो कपड़े मेले हो जाएंगे, और कपड़े जब मेले होते हैं ना तो इससे मतलब यानी कि वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, साफ लिबास से नजर तेज होती है। बहरहाल के सफाई सुथरा ये अच्छी चीज है, और इस तरह बच्चों को नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म भी चेंज कर लें और कपड़े अपने बदल लें, कपड़ों को मतलब बाज बच्चे माशाल्लाह बड़े यानी के वो नीट एंड क्लीन होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, और बाज बच्चे ख्याल नहीं रखते, कपड़े अपने गंदे कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये उल्टे आते देना लेना जो लो शैतान का काम है, इनका सीधा इन्होंने उल्टे हाथ से लिया। सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना ये किसका तरीका है? शैतान का। अब सेकंड, अब सीधे हाथ से लेना आपको, हाँ आदत बनानी है बेटे इसकी।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام محمد رفیع اللہ ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی صفائیوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس پر رہنمائی فرمائیں.
کپڑے بھی صاف رکھنے ہیں, بال بھی صاف رکھنے ہیں, رومال بھی صاف رکھنا ہے, تو کنگھی بھی کرنی ہے, تیل بھی لگانا ہے, تو یہ صفائی جو اسلام کو پسند ہے. اور سر میں تیل ڈالنا, کنگھی کرنا, یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا, کیا یہ ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس سے اپنے بالوں کو درست کر لے؟ یوں بکھرے ہوئے بال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئے, سب یہ سلیقے کے ساتھ, صفائی ستھرائی کے ساتھ یہ بال وغیرہ سب ہوں. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فرقان اتاری ہے. امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے بتایا کہ اپنے بالوں پر کنگھی کرنی چاہیے, اپنے بالوں کو بکھر کر نہیں رکھنا چاہیے. آج کل کے بچے مختلف فیشن والے بال رکھتے ہیں, اس بارے میں بھی کچھ بتائیے.
ہاں, یہ تو وہ تقریباً 99.9 بلکہ 100% احتیاطاً نہیں کہہ رہا میں, بال تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں. سنت کے مطابق تو بال شاید کسی کے ہوں, سنت کے مطابق بال یہ ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے بال رکھتے تھے, آدھے کان تک, پورے کان تک, یا اتنے بڑھ جاتے تھے کہ آپ کے کندھوں, مبارک کندھوں نے شولڈرز کو وہ یعنی چھو جاتے تھے, ٹچ کر جاتے تھے. اسے نیچے رکھنا تو عورت کا طریقہ ہے, نیچے نہیں ہونے چاہیے, بس اوپر اوپر کندھے سے بھلے چھو جائیں, ٹچ ہو جائیں. تو ایسے بال تو اب نہ بچے رکھتے ہیں, نہ ان کے ابو رکھتے ہیں, عام طور پہ نہیں رکھتے. سنتیں تو بہت چھوٹ گئی ہیں امت سے, افسوس. یہ ہمارا حسن رضا کی ماشاء اللہ زلفے رکھی ہیں, پورے بال ہیں الحمدللہ. ان کے ابو بھی پورے بال رکھتے ہیں, میں بھی پورے بال رکھتا ہوں الحمدللہ. آقا کی سنتوں پر عمل کرنے میں بڑا ثواب ہے. تو اب یہ کہ طرح طرح کے بالوں کے اب فیشن نکلے, اور مطلب فیشن آتا ہے ٹیمپریری ہوتا ہے. اب بیچ میں پونی بناتے تھے, پونی بنانا وہ نوجوان بناتے تھے, بھی جائز نہیں ہے, عورتوں کا انداز ہے. اچھا, اب یہ فیشن چلا ہے کہ ادھر ادھر سے یہ گنجا کر دیتے ہیں, مشین چلا دیتے ہیں, بالکل گنجا نہیں ہوتا, مشین چلا دیتے ہیں اور اوپر سے تھوڑے سے بال رکھتے ہیں. اب خدا جانے یہ کس کا طریقہ ہے, وہ یہ تعداد ہے اب لوگوں کی, یہ بچے بھی اسی طرح کے رکھنے لگے ہیں. اب اتنے اتنے بال ہیں تو اب اس میں تیل بھی نہیں ڈالتے. تیل ڈالنا یہ بھی سنت ہے, اور تیل ڈالنے سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے, یادداشت مضبوط ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, آپ کا بھی یہ حال ہوگا کہ یہ سوال جو آپ نے جیسے کیا نا, وہ کتنا سوچ سوچ کے وہ یاد کیا ہوگا, پھر بھول جاتے ہوں گے. تو یہ تیل نہ ڈالنے کی وجہ سے یہ یاد نہیں رہتا برابر. تیل خوب ڈالیں گے تو انشاءاللہ خوب یاد رہے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو روزانہ آدھے گھنٹے تک آپ کے سر مبارک میں تیل ڈالا جاتا تھا, اور جذب کرتے تھے اس کو, ابزورب. تو اس طرح مطلب اعلیٰ حضرت تو ایسے باکمال تھے کہ تیل بھی ڈالا جا رہا ہوتا, آدھا گھنٹہ ان کے پاس کہ ایک منٹ بھی نہیں ہوتا تھا, تو یہ تیل بھی ڈالا جاتا تھا اور اپنے جو کام لکھنے کا, فتوے لکھنے کا, یہ بھی آپ کرتے رہتے تھے, اور تیل کی بھی ترکیب ہوتی رہتی تھی. تو اس سے کیا, علماء کے لیے تو بہت مفید ہے کہ اس سے ذہن اچھا کام کرتا ہے, تو طلبا کے لیے بھی بہت مفید ہے. تیل ڈالنا چاہیے سر میں, آئل ڈالنا چاہیے, لیکن نہ طلبا ڈالتے ہیں, نہ ان کے آج کل شاید ٹیچرس بھی نہیں ڈالتے ہوں گے, ماں باپ بھی نہیں ڈالتے. عام طور پہ اب تیل ڈالنے کا کلچر بہت کم ہو گیا, اس کی وجہ سے شاید یادداشت بھی تقریباً جواب دے گئی ہے, بہت خراب ہو گئی ہے. तो बारह लेके तेल भी डालना चाहिए और इसमें कंघी भी करनी चाहिए फैशन के बालों के बजाय। ज़रा मैं यही अर्ज करूंगा कि सुन्नत के मुताबिक बाल रखने चाहिए, बच्चों को चाहिए कि वो आधे कान तक बाल रखें, इधर उधर से निकालने नहीं, पूरे बाल हों। अब अल्लाह करे माँ बाप आपको इजाजत दें, क्योंकि वो असल सुन्नतों की तरफ तवज्जो नहीं रही, फैशन हमारे जहन पर मुसल्लत है। गैर मुस्लिमों के जो तौर तरीके हैं, बदकिस्मती से मुसलमानों में अब वो दाखिल हो गए। अल्लाह करे कि आप सब और मैं भी हम नेक बन जाएं और सुन्नतों के पाबंद हो जाएं, कि प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करने वाले के लिए यह बिशारत भी है कि वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ जन्नत में दाखिल होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
मेरा नाम एहसान अहमद अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि बाज़ बच्चों का कमरा कमरा नहीं बल्कि कचरे का ढेर लग रहा होता है, इस बारे में भी कुछ इरशाद फरमा दें।
अल्लाह अल्लाह, जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज इसकी मतलब है कि वो सलीके के साथ तरकीब के साथ रखते हैं। जैसे कि नींद से उठेंगे तो अपना बिस्तर जो है वो फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जो इसके रखने की जगह वहां रखेंगे। अच्छा, अब तो बिस्तर भी चले गए, अब तो पलंग है घरों में, तो पलंग को तो फोल्ड करने से रहे, ये हमारे दौर की बात थी तो बिस्तर होते थे, अब भी खैर बिस्तर भी है, तो जो गुदड़ी या ब्लैंकेट जो भी है वो मतलब फोल्ड करके रखना है, यूं ढेर सारा बनाकर नहीं रखना इसको। इसी तरह कपड़े भी जब उतारेंगे तो उसको भी अच्छी तरह फोल्ड करके इसके कबट में रखना है। वो कपड़े भी एक इधर फेंका तो पाजामा, उधर फेंका तो, ये इस तरह मतलब भी बच्चे जाहिर के करते होंगे। तो इस तरह वो हर चीज, फिर वो रेपर्स भी फेंकते हैं, तो इस तरह कचरा कचरा जो कमरा जो इनका रूम, ये जैसे वही कि वो कचरे का ढेर नजर आता है। इंशाल्लाह आप ये सब चीजें अपनी जगह पर रखेंगे तो इसमें फायदा ये भी होगा कि आपको जरूरत के वक्त आपकी चीज मिल जाएगी, वरना ये पेन इधर रखे तो कॉपी उधर रखे, पेन ढूंढते रहेंगे कि पेन किधर है, कॉपी किधर है, वो किधर गया, ये किधर गया। तो जो चीज जहां से उठाई जाए वहीं रखनी चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज उसकी अपनी जगह पर होगी तो आपको बआसानी मिलेगी, वरना खुद आप तकलीफ में आ जाएंगे, वक्त पर नहीं मिलेगी तो परेशानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
मेरा नाम अब्दुल हादी मोहम्मद मोइन अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, क्या हम बच्चे भी खुशबू के लिए अत्तर लगा सकते हैं?
जी हाँ, लगा सकते हैं। तो हसन दा के हाथ में मैंने अभी नोट किया, अभी भी खुशबू है, ये लगाते हैं, सुनो इसको, आती है खुशबू, आप देखे खुशबू आ रही है, ये माशाल्लाह खुशबू लगाते हैं, तो बच्चे खुशबू लगा सकते हैं। ये अफवाहें हैं कि खुशबू लगाने से जिन चिमट जाता है बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? जिन खुशबू से नहीं चिमटता तो गंदी जगहों पे होता है, सफाई सुथराई जहां ना हो, गंदगी का ढेर हो, तो ये जो गंदे जिन जो है ना वहां रहते हैं, ये वॉशरूम और ऐसी गंदी चीजों में इनका वो ठिकाना होता है। खुशबू का लगाएंगे, खुशबू हमें पसंद होती है इंसानों को, और फरिश्तों को पसंद होती है खुशबू। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
मेरा नाम उसामा रजा है। मेरा सवाल यह है कि छालिया खाने की आदत कैसे निकाले?
छालिया खाने की आदत कैसे निकाले? छालिया खाना जो है ना, ये ज्यादा खाते हैं तो बाजू का नुकसान होता है। एक किस्ताई भाई ने एक अपने खानदान की औरत का मुझे किस्सा बताया कि वो छालिया की बड़ी शौकीन, यहाँ तक कि वो छालिया हर वक्त मुंह में इसके रहना है, सोते वक्त भी छालिया, जागते वक्त भी वो छालिया का बड़ा गुटका वो रखती थी। आखिरकार जहां ये छालिया रखती थी ना, वहां छाला पड़ गया, छाला पड़ गया, और फिर वो जख्म जो था वो आखिरकार कैंसर बन गया। अब बेचारे थे भी गरीब और इलाज के लिए डॉक्टर बोलते थे लाखों रुपए चाहिए। तो ये इस तरह आखिरकार वो बेचारी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। तो छालिया नहीं, आप लोग छालिया ना खाएं। अब जो ये पुड़िया आती है ना छालिया के पैकेट, इसमें वो जो लगाने का इत्र है ना, ये इसमें डालते हैं सस्ता वाला, मुझे मालूम आते हैं इसकी। तो अब सब ऐसा करते हैं ये भी नहीं कहता, लेकिन ऐसा भी करते हैं। तो ये सस्ता वाला इसमें खुशबू इत्र डालते हैं, क्योंकि इनको मार्केट में एक कंपटीशन होता है। ये अगर एक रुपए की बेचता है तो वो बोलेगा मैं एक रुपए की दो बेचूंगा, इस तरह ये कंपटीशन होता है। तो ये बिल्कुल यानी केमिकल और इत्र जो लगाने के, इत्र खाने में देते हैं सस्ते वाले। और इस तरह यानी ये मुझे इस तरह पता चला कि मैंने असल इत्र का काम मैंने काफी किया है। और मैं एक बार एक होलसेल की दुकान पर इत्र लेने गया हुआ था, तो एक आदमी आया, उसने कहा फुला फुला इत्र दे दो, वो सस्ता वाला इत्र था। तो मुझे जो याद पड़ता है कि वो दुकानदार ने खुद मुझे कहा था कि ये मतलब वो छालिया में डालेगा और लोगों को खिलाएगा, ये इससे मुझे पता चला। या पान की उसकी दुकान थी और उसमें खुशबू वो डालेगा बाहर, तो इस तरह ये खिला देते हैं। मतलब बंदा कल मरता हो आज मर जाए, हमारी जेब भर जाए बस। ये लोगों का मतलब बदकिस्मती से जहन बहुत से लोगों का खराब हो गया। हमको मुसलमानों की हमदर्दी करनी चाहिए, बल्कि हमको खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को आराम देना चाहिए, ना कि हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। तो यूं तो ये है कि ये छालिया जो ये पुड़िया जो होती है पैकेट, ये नहीं खाने चाहिए, ये नुकसानदेह। इसकी जगह बंदा ड्राई फ्रूट खाए, ड्राई फ्रूट फायदे वाला होता है। या जो वैसे ही फ्रूट आता है, फल आते हैं, वो खाने चाहिए। टाफिया और ये खट्टी मीठी गोलियां, ये सब सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये नुकसानदेह होती है। गला खराब हो जाता है, नजला हो जाता है, खांसी बुखार, फिर पता नहीं आगे चलकर बड़ी गंभीर बीमारियां भी बाज़ औक़ात इन चीजों से लग जाती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, और हम अल्लाह करे कि तंदुरुस्त लेकर उसकी इबादत करते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, बाज बच्चे यूं करके बैठते हैं हाथों में, यूं कैंची डाल के ये करके बैठते ना, तो ये इस तरह अगर नमाज में यूं करेंगे ना, तो नमाज मकरूह तहरीम में होती है, नाजायज और गुनाह। और अगर नमाज के इंतजार में बैठे हैं तब भी ऐसा गुनाह है, इंतजार में कि जमात होने वाली है, बैठा हुआ है, तब भी गुनाह है ना। तो इसके अलावा जैसे अभी हम बैठे हैं, तो अभी ये उंगलियां डाली, तो ये मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है, अच्छी बात नहीं है। हाँ, कोई जरूरत है तो डालने में कोई हर्ज भी नहीं है। इसी तरह जो ये उंगलियां बजाते हैं, चटकाते हैं, तो इसके भी यही मसाइल हैं। आप समझे नहीं शायद, यूं करने में हर्ज नहीं है, यूं करें, यूं ना करें। यूं करने में से बेटा गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है, तो बचना अच्छा है। नमाज में गुनाह है, और नमाज के इंतजार में बैठे हैं तब भी गुनाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों की इस्लाह के लिए, इनको नेकी के रास्ते पर डालने के लिए, बच्चों को नमाजी बनाने के साथ साथ अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने के लिए इंशाल्लाह अहम किरदार अदा करता रहेगा। आप भी देखिए, खुसूसन अपने बच्चों को, बच्चों का मदनी चैनल दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों